नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विचार पर बात करने वाले हैं, धर्म मंच से लोक शिक्षण। ये चर्चा पूरी तरह उनके इसी नाम के उद्बोधन पर आधारित रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने धर्म के मंच का इस्तेमाल कैसे देखा, और क्या सिर्फ धर्म ही उनकी नजर में काफी था या और भी कुछ। तो आइए समझते हैं इस गहरी सोच को।
हाँ बिल्कुल। देखिए, पूज्य गुरुदेव का ये मानना था कि भारत तो मूल रूप से एक धर्म प्रधान देश है ही, और यहाँ के जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमेशा धर्म को ही बदलाव का एक जरिया बनाया। उनकी अपनी युग निर्माण योजना भी जब शुरू हुई तो वो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, उन्हीं के आसपास केंद्रित थी।
हाँ, ये तो शुरुआत थी, पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि शायद यहीं से और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। उनका जो नजरिया था वो किसी एक धर्म तक ही सीमित तो नहीं था, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। उनका मानना था कि भाई सभी धर्मों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। ये सोचना कि पूरी दुनिया कभी एक ही धर्म को मान लेगी, ये तो मतलब एक असंभव सपना है। जरूरी ये है कि हर धर्म अपनी जगह से बेहतर बने और सब एक साझा लक्ष्य की तरफ बढ़ें। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कुंभ मेले का, कि अलग अलग दिशाओं से आकर लोग एक ही संगम पर मिलते हैं।
अच्छा, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब जैसे उन्होंने वेदों की उदार बातें सामने रखी, वैसे ही उनका कहना था कि कुरान या दूसरे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी अच्छी बातों को भी उनके मानने वालों तक पहुंचाना होगा, ताकि वो उन्हें सही से समझें, अपनाएं।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और ये जो असर है ये सिर्फ धर्म तक ही नहीं रुकता, पूज्य गुरुदेव साहित्य को यानी लिखने पढ़ने की दुनिया को एक बहुत ही ताकतवर माध्यम मानते थे।
हाँ, लिटरेचर।
हाँ, लिटरेचर। इसमें सिर्फ लेखक ही नहीं, छापने वाले, अखबार वाले, पुस्तकें बेचने वाले, वो कहते थे सब शामिल हैं इसमें। और उन्होंने जोर दिया कि भाई ऐसा साहित्य रचा जाए जो इंसान को गिराए नहीं बल्कि ऊपर उठाए, विनाशकारी ना हो। और अगर मौजूदा लेखक नहीं मानते तो उन्होंने यहां तक कहा कि नए लेखक तैयार करने होंगे, नए पत्रकार, यहां तक कि नए प्रेस भी खड़े करने होंगे।
अच्छा, यानी एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की बात। और कला, चित्रकला, संगीत, नाटक, इन पर भी उनका कुछ खास ध्यान था शायद। मुझे याद है इन्होंने शायद नारी के चित्रण पर थोड़ी चिंता जताई थी।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था उनके लिए कि नारी को सिर्फ मतलब एक भोग की वस्तु या सिर्फ आकर्षक दिखने वाली रमणी की तरह न दिखाया जाए, बल्कि उसे देवी, माँ या बहन के रूप में जो सम्मानित रूप है उनमें पेश किया जाए। उनका कहना था कि कलाकार को सिर्फ मनोरंजन करने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि एक साधक और रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। और अगर आज की कला समाज को नैतिक रूप से नीचे ले जा रही है तो उसके सामने एक अच्छी, एक सकारात्मक कला की धारा खड़ी करनी ही होगी। मतलब नए कलाकार, नया संगीत, नए फिल्में। वो कहते थे कलाकार की भूमिका नट या नाचने वाले जैसी नहीं बल्कि संत, योगी और साधक जैसी होनी चाहिए।
ये तो बहुत ऊंची बात कह दी उन्होंने कलाकार के लिए। अच्छा, ये तो हुई विचारों की कला की बात। इसके बाद आता है पैसा यानी धन। पूज्य गुरुदेव ने अमीर लोगों से, धनवानों से क्या कहा इस बारे में?
उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखो, ये जो धन संपत्ति है ये समाज की धरोहर है, एक तरह से अमानत है आपके पास। इसे सिर्फ अपने ऐशो आराम या अपने परिवार पर ही नहीं लुटाना है बल्कि लोगों की भलाई के कामों में लगाना है, जैसे अच्छी शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, विचारों को सुधारने वाले जो काम है इनमें लगाना चाहिए। पैसा कमाने पर उन्होंने रोक नहीं बताई, पर फिजूल खर्ची और जमाखोरी पर उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इस पर बंधन होना चाहिए।
और अगर मान लीजिए संपन्न लोग आगे ना आए तो क्या आम आदमी कुछ नहीं कर सकता इस दिशा में?
क्यों नहीं कर सकता, उन्होंने उसका भी रास्ता सुझाया। कहा कि आम जनता से छोटी छोटी बचतें इकट्ठी करके भी ये काम हो सकते हैं, जैसे सहकारी समितियां बनाकर। उनका हिसाब बड़ा सीधा था, अगर 50 करोड़ भारतीय सिर्फ एक एक रुपया भी हर रोज या हर महीने दें तो सोचिए कितनी बड़ी रकम जमा हो सकती है।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है।
बिल्कुल, उससे विचार क्रांति से लेकर उन्होंने कहा फिल्म बनाने तक के काम हो सकते हैं।
और आखिर में राजनीति, पॉलिटिक्स, इस पर तो पूज्य गुरुदेव के विचार बहुत ही स्पष्ट थे जहां तक मुझे पता है, कि राजनीति को हमेशा धर्म यानी नैतिकता और अच्छे आचरण के नीचे उसके नियंत्रण में रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने में होता था, जैसे राज सत्ता पर गुरु वशिष्ठ या आचार्य चाणक्य जैसे जो नैतिक मार्गदर्शक थे उनका एक अंकुश रहता था। उनका मानना था कि अगर सत्ता में बैठे लोग ईमानदार हों, चरित्रवान हों, तो समाज की कई बुराइयां जैसे नशाखोरी है, कला का गलत इस्तेमाल है, यहाँ तक कि पशुओं पर जो हिंसा होती है, ये अपने आप खत्म की जा सकती हैं।
लेकिन ये होगा कैसे? मतलब सत्ता में अच्छे लोग कैसे आएंगे?
उसके लिए उन्होंने कहा कि वोट डालने वालों को जागरूक करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वे सही सिद्धांतों के आधार पर वोट दें, न कि जाति देखकर या पैसे के लालच में या किसी जान पहचान के चक्कर में पड़कर। असली ताकत तो वोटर के हाथ में ही है ना?
हाँ, ये बात तो सही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूज्य गुरुदेव का ये धर्म मंच से लोक शिक्षण का जो विचार था ये कितना फैला हुआ था। मतलब धर्म से शुरू होकर साहित्य, कला, फिर धन और आखिर में राजनीति, हर पहलू को छूता था।
हाँ, और सबका लक्ष्य एक ही था।
क्या?
कि इंसान के अंदर जो देवत्व है, जो अच्छाई है, उसे जगाना और इस धरती को बेहतर बनाना, जिसे वो पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण कहते थे।
उनका मानना था कि असल में सारी समस्याओं की जड़ इंसान की अपनी भावनात्मक गड़बड़ियां, उसकी अपनी सोच की कमियां हैं। और शायद यही बात हमें आज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, चाहे वो हमारे अपने परिवार में हो, दोस्तों के बीच हो या हमारे काम की जगह पर हो, हम उसका इस्तेमाल समाज की सोच और भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या हम सिर्फ बाहरी समस्याओं पर ही ध्यान दे रहे हैं, जैसे गरीबी है या बीमारी है, या उस अंदरूनी सुधार और आत्मनिर्माण पर भी जिसे पूज्य गुरुदेव सभी समस्याओं का असली हल मानते थे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि अगर अंदर अच्छाई नहीं है तो बाहर की सुख सुविधाएं भी दुख का कारण बन सकती हैं।
ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।